ये गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जया यशोदानंदन जया ब्रज जन रंजन यशोदा जया यमुना तीरा बन चारी जया कुंज जया यमुना तीरा बन चारी जया कुंज दीना राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाल की जय। नेत्रलीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाल की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनदाय की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुमंद्र बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी All glory to Simran devotees, all glory to Simran devotees, all glory to Simran devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 अध्याय का नाम है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। श्लोक संख्या 7 बोले क्षुद्रायुषाम नृणाम अंग मर्त्यानाम मृतम इच्छताम यो प्रभूतो भगवान मृत्यो सामित्र कर्मणि क्षुद्रायुषाम नृणाम अंग मर्त्यानाम मृतम इच्छताम यो प्रभूतो भगवान मृत्यो सामित्र कर्मणि क्षुद्रायुषाम नृणाम अंग मर्त्यानाम मृतम इच्छताम यो प्रभूतो भगवान मृत्यो सामित्र कर्मणि। बोलिए वैष्णो देवियां शब्दार्थ बोलिए क्षुद्र अत्यंत छोटी आयुषाम आयु वाले नृणाम मनुष्यों का अंग हे सूत गोस्वामी मर्त्यानाम मरने वालों का ऋतम शाश्वत जीवन इच्छताम चाहने वालों का यह यहाँ उपस्थित होने के लिए बुलाया गया भगवान भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए मृत्यु मृत्यु के नियंत्रक यमराज सामित्र दमन करते हुए कर्मणि कार्यों को अनुवाद मेरे पीछे बोलिए हे सूत गोस्वामी मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम विचार करेंगे इस श्लोक पर इस श्लोक के शब्द किस प्रकार से ये बने हैं। हाँ ये बात कौन कह रहे हैं जो लोग यहाँ रोज बैठते हैं कितने लोग यहाँ रोज बैठते हैं तो उनमें से कौन बताएंगे ये बात कौन कह रहे हैं? हैं? ऋषिगण? ऋषिगण में कोई एक बोल रहे हैं या कई बोल रहे हैं? सब लोग बोल रहे हैं, सौनक ऋषि। तो सब लोगों की ओर से एक व्यक्ति प्रश्न करता है ना, प्रश्न करता है या प्रशंसा करता है कथा की। यहाँ पर सौनक ऋषि प्रशंसा कर रहे हैं कथा की, और इससे वक्ता को प्रोत्साहन मिलता है। जो श्रोता है वो इस प्रकार से प्रश्न करे जिससे वक्ता को निराशा ना हो बल्कि प्रोत्साहन मिले, प्रश्न करे या प्रशंसा करे। तो सौनक मुनि जो है प्रशंसा कर रहे हैं, और किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? इस कथा की, कि हम लोग जिस कथा में बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं? छिद्रायुषाम नृणाम, नृणाम माने मनुष्यों, मनुष्यों के लिए जो छिद्र आयुषाम, छिद्र आयु, कलयुग में लोगों की आयु बहुत थोड़ी है, सत्युग में 1,00,000 साल है और त्रेता में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल, कलयुग में 100 साल, वो भी घटती जा रही है। तो क्षुद्रायुषाम, कलयुग के जो अल्पजीवी मनुष्य हैं, अंग, अंग शब्द का अर्थ क्या है? बहुत जो प्रिय व्यक्ति होता है उसको हम अंग बोलते हैं। अंग, अंग जैसे हमारे शरीर का कोई अंग है हमारे लिए कितना प्रिय होता है, मान लीजिए कि कोई मुझे 10,00,000 रुपए, 10 करोड़ रुपए दे कि अपना अंग दे दो, ये हाथ या उंगली काट के दे दो, तो मैं 10 करोड़ रुपए में भी उंगली काट के नहीं दूंगा अपने, कि नहीं? आप देंगे? नहीं देंगे। 10 करोड़ रुपए में भी अपनी उंगली भी काट करके या एक कान काट करके दे दो, दोगे? नहीं दोगे। विचार करोगे? अगर बहुत आवश्यकता पड़े तो विचार करोगे, 1,000 बार विचार करोगे अपना कान काट करके दूं या ना दूं, या नाक काट के दूं या ना दूं। अंग जो है मतलब बहुत प्रिय होता है, और शरीर को भी अंग बोलते हैं, पूरे शरीर को भी अंग बोला जाता है, शरीर के किसी अंग को भी अंग बोला जाता है और शरीर को भी अंग बोला जाता है। तो अपना शरीर भी बहुत प्रिय है, कोई अपना शरीर नहीं देना चाहेगा कि 10 करोड़ रुपए मैं आपको देता हूँ, आप अपना शरीर दे दो, तो फिर करोड़ 10 करोड़ रुपए का मैं क्या करूँगा अगर, है ना? तो अपना शरीर भी जो है कोई व्यक्ति नहीं देना चाहता है, 10 करोड़ रुपए में भी अपना शरीर नहीं देना चाहता। अंग का मतलब, मतलब किसी व्यक्ति को अंग शब्द से अगर हम संबोधित करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत प्रिय, प्राण, जैसे मतलब प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। शरीर या प्राण कोई नहीं देना चाहता, तो अंग का मतलब क्या होता है? बहुत प्रिय, उसको अंग बोलते हैं। इतना शब्द जो है प्रिय नहीं होता, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय अंग। तो सौनक मुनि जो है किसको बोल रहे हैं? अंग किसको बोल रहे हैं? सूद गोस्वामी को, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, सूद गोस्वामी से बोल रहे हैं, सूद गोस्वामी से अंग बोल रहे हैं। तो सूद गोस्वामी देव व्यासन पर बैठे हुए हैं लेकिन वो तब इन्फीरियर हैं उनसे, उनकी तुलना में, क्योंकि ये ब्राह्मण और बड़े वरिष्ठ ब्राह्मण हैं, और ये जो हैं विलोम जाति के हैं, तो कुछ है, मतलब शूद्र के समकक्ष। लेकिन अंग कह करके कि तुम हमें बहुत प्रिय हो, हमने तुम्हें व्यासन पर भी बैठाया है, क्यों बैठाया है? क्योंकि हमारी बहुत आदर की भावना है कि आप कथा सुनाइए। तो वेद नहीं सुना सकते, वेद मंत्र नहीं पढ़ सकते, सूत गोस्वामी को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, इन कथा सुनाने का अधिकार है, और वो कथा वेद मंत्रों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। एक दृष्टि से बहुत जल्दी ही भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन वेद मंत्रों में अधिकार नहीं है सूत गोस्वामी का। तो अपने से छोटे व्यक्ति को हम बोलते हैं डियर, बड़े व्यक्ति को नहीं बोलते हैं प्रिय, अपने बड़े व्यक्ति को नहीं बोलते हैं, सम्मानित व्यक्ति को हम प्रिय शब्द नहीं बोलते, है ना? डियर, प्रिय, किसको बोलते हैं? अपने छोटे से को बोलते हैं। तो जो शौनक ऋषि हैं वो जो है बहुत वरिष्ठ ब्राह्मण हैं, और सुध गोस्वामी बहुत छोटे हैं, उनसे बहुत जूनियर हैं, उम्र में भी बहुत कम है। अंग शब्द से संबोधन कर रहे हैं कि तुम हमें उसी तरह से प्रिय हो जैसे हमारा शरीर या हमारे प्राण अंग, क्षुद्रायुषाम नृणाम अंग। तो हे सुध गोस्वामी, जो मनुष्य थोड़ी आयु वाले हैं, सभी हैं, अगर 100 साल की भी आयु है तो भी हम सोचते हैं बहुत लंबी आयु हो गई भाई 100 साल की, लेकिन दूसरे युगों की तुलना में बहुत थोड़ी है। द्वापर युग की आयु 1000 साल की, कहाँ 1000 साल की आयु, कहाँ 100 साल की आयु, तो थोड़ी ही आयु है। 80 साल की हम कहते ओ बहुत लंबी आयु हो गई 80 साल की, कुछ भी नहीं है, तो थोड़ी आयु। कलयुग में लोगों की आयु बहुत थोड़ी है। क्षुद्रायुषाम नृणाम अंग मर्त्यानाम, मर्त्यानाम नृणाम मर्त्यानाम, मर्त्य मर्त्य का मतलब जो मृत्यु के बिल्कुल निकट हैं, वो थोड़ी आयु वो भी निश्चित नहीं है कब शरीर छूट जाए, उसमें भी थोड़ी आयु तो है ही है, मानो 100 साल की या 60 साल की, लेकिन उसमें भी 20 साल में 25 साल में भी अगर शरीर छूट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, मरते हैं। मर्त्य का मतलब मृत्यु के बिल्कुल निकट, मरने लायक हैं, मरने के निकट हैं सब मनुष्य जो है। मर्त्यानाम ऋतम इच्छताम, ऋतम का मतलब है शाश्वत जीवन जो चाहते हैं, थोड़ी सी आयु में भी आप शाश्वत जीवन चाहते हैं, तो शाश्वत जीवन पाने के लिए यानी भगवान के धाम में जाने के लिए लंबी आयु होना चाहिए ना, जिसमें कि आप लंबी आयु में आप कुछ कर सकें साधन कि आप भगवान के धाम जा पाएंगे। तो ये जो आशा है ये बहुत बड़ी आशा है, मतलब आशा कभी हम करते हैं कि आशा हम करते हैं लेकिन वो जो है संभव नहीं है, किसी बात के लिए हम आशा करते हैं जो असंभव हो तो वो दुराशा भी बोली जाती है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर होप। तो फिर भी कुछ लोग हैं जो थोड़ी आयु के हैं और फिर भी भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो इहोपहूतो भगवान, उनके लिए यहाँ पर उपहूतो भगवान मृत्यु, यहाँ पर बुला लिए गए हैं मृत्यु देवता को, बुला लिया गया यहाँ पर, बुला लिया गया है उनके लिए जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं और आयु बहुत थोड़ी है और कभी भी शरीर छूट सकता है, तो उनके लिए मृत्यु के देवता को हमने बुला लिया है। भगवान, यहाँ पर भगवान शब्द का अर्थ क्या है कि कोई विशेष बल हो ज़्यादा या धन हो, कोई भी एक ऐसा ज़्यादा हो तो उसको भगवान बोलते हैं। तो मृत्यु बहुत बलवान है, मृत्यु सर्वहरश्याम, सब कुछ छीनने वालों में मृत्यु मैं हूँ। तो कोई छीनता है तो कितना छीनेगा, कोई व्यक्ति छीनने वाला अगर आएगा तो आपका घर मकान छीन लेगा या पैसा छीन लेगा, लेकिन मृत्यु क्या करते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। मृत्यु सर तो बलवान, मृत्यु बहुत बलवान है, तो इसलिए भगवान कहा गया है भगवान मृत्यु। और यहाँ मृत्यु का अर्थ प्रभुपाद लिखते हैं मृत्यु के देवता यानी यमराज, तो यमराज को बुला लिया गया है, यहाँ पर बुला लिया गया है। सामित्र कर्मणि, सामित्र कर्मणि का मतलब है यज्ञ के कार्य में, यज्ञ के कार्य में ये जो कथा चल रही है भी यज्ञ है, इस कार्य में बुला लिया गया है, यमराज को बुला लिया गया है। तो अब उनके लिए क्या हो गया, वैकुंठ का द्वार खुल गया है, मतलब जो लोग अगर शरीर छोड़ेंगे अपना इस कथा के अंदर तो वो कहाँ जाएंगे, यमराज के पास नहीं जाएंगे, सीधे ऋतम इच्छताम शाश्वत जीवन में जाएंगे। तो यहाँ पर यमराज को बुला लिया गया है ना, तो वो कह रहे हैं वैसे यमराज को नहीं बुलाया गया, यमराज को व्यक्तिगत रूप से नहीं बुलाया गया, जहाँ पर कथा होती है तो जहाँ यहाँ पर यमराज हैं है? क्योंकि ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं तो वहाँ पर हैं, और जिन जो लोग ऐसी स्थिति में शरीर छोड़ते हैं तो भगवान के धाम जाते हैं। तो आगे अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शिल प्रभुपाद की। जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, क्यों क्यों वह मृत्यु के पास से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहता है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन, पशु जीवन में भी निम्न और निम्नतर जीवन होते हैं, पशु जीवन में भी कुछ निम्न जीवन है और कुछ निम्नतर जीवन है। निम्न जीवन है जैसे गाय, गाय का जीवन निम्न है लेकिन फिर भी अन्य पशुओं की तुलना में ज़्यादा विकसित चेतना है गाय की, लेकिन और जो पशु हैं वो बहुत ही निम्नतर उनका जीवन होता है। और कुछ पशु तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सोते ही रहते हैं, बिल्कुल तमोगुणी। तो निम्नतर जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन में भी उच्चतर और उच्च जीवन होता है, कुछ लोगों का उच्चतर जीवन होता है, उच्चतर जीवन में ज़्यादा चेतना होती है और सत्वगुण का विकास होता है उच्चतर जीवन। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर, कैसे विकसित होता है, शरीर छोड़ते हुए निम्नतर जीवन मतलब सोता ही रहता है जैसे कोई पशु है या मांसाहार ना करता है, तो वो शरीर छोड़ करके फिर गाय का शरीर प्राप्त करता है ना, तो उच्चतर पशु जीवन में आ गया, फिर गाय का शरीर छोड़ करके मनुष्य का जीवन प्राप्त करता है, तो उच्चतर मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, और उससे भी ऊपर ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करता है तो और उच्चतर जीवन। तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे जैसे चेतना विकसित होती है क्यों, तो वो मृत्यु के पास से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहता है कि भाई मरे नहीं, हम कैसा उपाय करें कि हमें मरना ना पड़े। आगे प्रभुपाल लिखते हैं, आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं। आधुनिक विज्ञान विज्ञान उनकी चेतना और विकसित है, अध्ययन करते हैं है? अध्ययन करते हैं शरीर की रचना का अध्ययन करते हैं है? और मृत्यु कैसे होती है तो उनमें जो कोष हैं उनका भी अध्ययन करते हैं, कैसे कोष बदलते हैं शरीर के अंदर, सेल बदलते हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं और उसमें बहुत परिश्रम कर रहे हैं और लगातार परिश्रम करते जा रहे हैं, अपने प्रयोग करते जा रहे हैं है? कई दवाइयों को खोज रहे हैं कि भाई ये बीमारी ठीक हो जाए, वो बीमारी ठीक हो जाए, कई प्रकार की दवाइयों को खोज रहे हैं और कोई ना कोई ऐसा रसायन को खोज रहे हैं कि जैसे हमारे शरीर के सेल जो है पुराने ना हों और जो है हमेशा स्वस्थ रहे जीवन, या बुढ़ापा ना आए, अगर बुढ़ापा आए तो मौत ना आए, तो कोशिश कर रहे हैं तो चेतना तो विकसित है लेकिन दिशा उनकी गलत है, सही दिशा नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे खुद उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते जो सब लोगों के लिए कोशिश कर रहा है कि भाई मैं कुछ ऐसा उपाय खोजूं, ऐसा केमिकल खोज लूं कि लोगों की मृत्यु ना हो, है ना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि वो दूसरों के लिए तो कुछ कर नहीं पाता है, अपने लिए भी नहीं कर पाता है, मृत्यु के क्रूर हाथ उसको भी खा लेते हैं, मौत के मुंह भी चला जाता है, वो दूसरों को क्या बचा पाएगा, है ना। तो कितने कितने उपाय करते हैं, किसी पहले समय में जो है बड़े बड़े धनियों को वैज्ञानिक लोग आश्वासन देते थे कि हम आपके शरीर को जो है बर्फ़ में रख देते हैं, बर्फ़ में आपको आपके शरीर को रख देते हैं और जब खोज लेंगे मृत्यु का उपाय तो आपको हम जो है फिर जिंदा कर देंगे, तो बर्फ़ में रख दिया, वो मर गए, वो मरने से पहले ही मर गए, है ना। और उनको पता नहीं कि आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो दूसरा शरीर प्राप्त करती है। इनको वैज्ञानिकों विज्ञान में जो है ये बहुत बड़ा ज्ञान यही है कि वो आत्मा को समझ नहीं कि आत्मा मरती नहीं है और शरीर नष्ट होता है, ये शरीर नहीं रहेगा, आत्मा नष्ट नहीं होती है, तो आत्मा को जानते ही नहीं है, है ना। तो इस तरह से कितने लोगों को जो है उन्होंने धोखा दिया और अपने को भी धोखा दिया, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रकृति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है वो खुद यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। यमराज का बुलावा होता है तो यमदूत आते हैं और यमदूत उसको दिखाई पड़ते हैं, उसको ही यमदूत दिखाई पड़ते हैं और किसी को नहीं यमदूत दिखाई पड़ते हैं, है ना। और जब उनको देख करके वो चिल्लाता है तो अस्पताल में जो मरीज होते हैं जो आवाज़ करते हैं कुछ इस तरह की, क्योंकि उनके गले में जो कफ है वो हमेशा साफ कर दिया जाता है तो आवाज़ निकलती है। सामान्य व्यक्ति के गले में कफ फंस जाता है तो आवाज़ नहीं निकाल पाता है, लेकिन अस्पताल में जो मरीज होते हैं वो आवाज़ निकालते हैं क्योंकि कफ गले का जो है वो साफ करते रहते हैं तो आवाज़ निकलता है। तो जब आवाज़ें निकालता है तो अस्पताल में एक कुछ उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है कि वो इस तरह की आवाज़ें निकलती ही हैं, और कोई नहीं जानता, डॉक्टर नहीं जानते, कोई नहीं जानता है कि वो यमदूतों को देख रहा है और वो चिल्ला रहा है और कुछ बोल रहा है, तो वो उसको कुछ शब्द बोलते हैं कि भाई ये तो होता ही है, मरने के पहले होता ही है, है ना। क्या शब्द है वो जो है मेडिकल में कुछ वो शब्द होता है कि भाई ये तो होता ही है, निकलता ही आवाज़ ऐसे, लेकिन वो यमदूतों को देखता है। अस्पताल में भी यमदूत आते हैं, अस्पताल के दरवाजे हैं खिड़कियां हैं तो आते हैं, वो मरने वाला देखता है ना, तो उसको जो है कुछ एक शब्द दिया है कि भाई ये तो होता ही है, जो मरने वाला उसको वो होता ही है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार वो भी बन जाता है, वैज्ञानिक भी बन जाता है मृत्यु का शिकार। और जब वो अस्पताल में पड़ा हुआ उसका गला साफ है तो आवाज़ निकालता है, तो जो डॉक्टर लोग हैं वो भी कहते हैं हाँ ठीक है, ये तो नेचुरल है, होता ही ऐसा, कोई नहीं जानता कि यमराज उसको लेने आए और उसकी जो आत्मा है उसको यातना शरीर मिला है और उसको लेकर बांध करके और मारते हुए यमराज के पास ले जाते हैं। अच्छा, वो मर जाता है, पापी मर जाता है, तो ये लोग सोचते हैं चलो बेचारे को मुक्ति मिल गई, उनको पता नहीं कि अब असली यातना शुरू हुई है, उसकी असली जीवन शुरू हुआ है उसको यातना भोगने का, लोग सोचते हैं चलो बेचारे को मुक्ति मिल गई। तो जो लोग आत्मा को नहीं मानते हैं वो भी सोचते हैं मर गए तो ठीक है, अब कुछ नहीं रहा तो कष्ट भी नहीं रहा, हाँ तो व्यक्ति मर जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, अब अगला जीवन है ही नहीं तो कष्ट भी नहीं है, ठीक है अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ बड़ा कष्ट भोग रहा था, ये असली कष्ट उसका शुरू हुआ है, क्योंकि आत्मा तो नष्ट हो नहीं सकती है, फिर कितना कष्ट उसको मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते कितना कष्ट मिलेगा। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता, एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकता, मृत्यु को रोकने की बात दूर है। प्रभुपाद क्या करें, एक सेकंड भी मृत्यु अगर निश्चित हो गई, इस व्यक्ति की मृत्यु इस समय होनी है निश्चित हो गई, तो एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकता। आगे, यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। तो उनको बुला करके प्रभुपाद के उनको बुला करके पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन कराया जाए, लेकिन बुलाए कौन उनको, तो मतलब ये है कि पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन करेंगे तो वो आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान की कथा होती है, पवित्र नाम सब देवता वहाँ पर आते हैं, तो मृत्यु के देवता क्यों नहीं आएंगे, सभी देवता उपस्थित, सब तीर्थ उपस्थित होते हैं, सब देवता उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर वो भी उपस्थित होंगे, क्यों नहीं होंगे उसमें। यमराज तो जो है महाभागवत हैं, 12 महाभागवतों में से एक हैं, तो वो क्यों नहीं आएंगे। तो जो प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्हें बुला करके, यानी यमराज को बुला करके पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन कराया जाए, तो इसका मतलब क्या है, हम थोड़ी यमराज को कुछ करेंगे, ईमेल भेजेंगे या इनविटेशन भेजेंगे। आप इनविटेशन भेजोगे उनको नहीं मिलेगा ऐसे, लेकिन पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं तो इनविटेशन उनको मिल जाता है, अब वो आ जाते हैं। तो उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएंगे। कृष्ण कथा जहाँ होती है तो अपने आप आ जाते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यमराज भगवान के परम भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। तो उनको अच्छा लगता है कि मुझे बुलाया गया है। तो आपने तो नहीं बुलाया उनको, लेकिन उनको लगता है कि मुझे बुला रहे हैं और कीर्तन हो रहा है और कथा होती है कृष्ण की, तो यमराज को अच्छा लगता है। ओ, मुझे बुलाया गया है। किसने बुलाया? कोई नहीं बुला रहा है, लेकिन इतने बड़े भक्त हैं कि वो स्वतः सोचते हैं कि मुझे बुलाया जा रहा है और मुझे जाना चाहिए, है ना। आगे, इस तरह सोनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। ये उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो जो मरना नहीं चाहते हैं, तो एक विधि यही है ना, यही बताया गया, आयु हरति वैपुन शाम और दिनस्थम चयन सौ तश्चरते ये क्षण नीत है उत्तम श्लोक वार्तया, कि उनकी आयु समाप्त होती है, उनकी आयु समाप्त कर देते हैं सूर्य, उद्यन अस्तम चयन सौ उदय होकर के और अस्त हो जाते हैं सूर्य, तो आपकी आयु को वो छीन ले जाते हैं और रोज एक दिन आपकी आयु छीन लेते हैं। इस प्रकार से सूर्य देव जो है उदय होकर के और अस्त होकर के आपकी एक दिन की आयु छीन करके ले जाते हैं। आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपकी एक एक दिन की आयु वो छीन करके ले जाते हैं। तत्चरते ये क्षण होने दे, उनके बिना जिनका क्षण बीतता है, उत्तम श्लोक वार्तया भगवान की कथा में जिनका क्षण बीतता है, तो उनकी आयु सूर्य देवता नहीं ले पाते, उदय अस्त होते हैं उनकी आयु नहीं जाती, उनकी आयु नहीं छिनती, क्योंकि उन्होंने अपना समय भगवान की कथा में दिया है, तो उनकी आयु नहीं छिनती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मनुष्य के जीवन का असली जो है जो लाभ है वो ये है, और आपने भगवान को अगर आपने अपना समय दिया है तो उससे आपको करोड़ों गुना ज़्यादा समय मिलेगा। और वो आपको जो है जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाला है, तो यही कार्य जो है आपको मृत्यु के बंधन से छुड़ाता है, तो ये फिर यही माना जाता है कि आपका ये समय जो है बीता नहीं है, ये समय नहीं बीता आपका, और बाकी समय जो है बेकार चला गया, बीत गया, ये समय नहीं बीता आपका। और इस समय अगर शरीर भी छोड़ देंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, तो वो जो है मृत्यु नहीं मानी जाएगी। तो मृत्यु से आप छूट रहे हैं, तो उसी को बताया गया है कि मृत्यु से छूटने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई। तो जो लोग ऋतम इच्छताम जो शाश्वत जीवन पाना चाहते हैं, तो उनके लिए यमराज जो है यहाँ पर आ गए हैं, तो वे जो है आपके कर्म के खाते उस समय नहीं लिखेंगे, आपका क्या कर्म हो रहा है वो नहीं लिखते इसको, क्योंकि ये सब आपका अकर्म हो जाता है, और अकर्म जो है भगवान की प्राप्ति कराता है। इस श्लोक का जो हिंदी पद्यांतर है, पद्यानुवाद विष्णुप्रिया देवी ने किया है, हे प्रिय सूत, इस जग के जीव चाहें तो केवल मोक्ष ही, पर अल्प आयु के कारण वे हैं मृत्यु से ग्रसित नित्य ही। उनके कल्याण को हृदय में धर आवाहन यम का किया, यम को इस संसार में शांति कर्म में नियुक्त किया। इस श्लोक का ये पद्यानुवाद है। ध्रुव महाराज भी जिस समय भगवान के धाम में गए उस समय भी मृत्यु देवता आए थे। मृत्यु, ध्रुव महाराज की कथा श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध में आती है। तो जब भगवान के धाम जाते हैं और वैकुंठ से विमान आता है तो उसमें यम मृत्यु देवता आते हैं और उनके सामने सिर झुकाते हैं, और ध्रुव महाराज क्या करते हैं, उनके सिर में पैर रख करके विमान में चढ़ जाते हैं, मतलब शरीर भी नहीं छोड़ा। मृत्यु देवता आते हैं कि भाई अपने शरीर को छोड़ करके और दिव्य शरीर प्राप्त करके जाओ भगवान के धाम, है ना, तो मृत्यु का आप वरण करो। तो भक्त लोग जो है मृत्यु को स्वीकार करते हैं, तो मृत्यु के अधीन नहीं होते हैं, मृत्यु को स्वीकार करते हैं, तो शरीर छोड़ के और दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं। ध्रुव महाराज ने अपना शरीर भी नहीं छोड़ा, तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में चले गए, तो उनका वो शरीर ही दिव्य हो गया, आध्यात्मिक हो गया, उनका भौतिक शरीर ही आध्यात्मिक शरीर बन गया। और ध्रुव महाराज जहाँ भी गए हैं ध्रुव लोक में वो वैकुंठ ही है, लेकिन अपनी पहचान वो उसी शरीर में बनाए हुए हैं कि वो तानपाद के पुत्र हैं, महाराज वो तानपाद के पुत्र हैं, और माता सुनीति, उनकी सुनीति माता है, तो माता भी उनके धाम में गई, तो माता भी वहाँ उसी शरीर से और पुत्र भी उसी शरीर से और वही संबंध भी बना हुआ है और वैकुंठ में रहते हैं वो, तो माता का शरीर भी आध्यात्मिक हो गया और पहचान अपनी वही बनी हुई है। जबकि कोई शरीर छोड़ता है तो अपनी पहचान पर छोड़ देता है कि मैं किसका पुत्र हूँ और किसका भाई हूँ, किस कौन मेरी माता है, पहचान छोड़ देता है, तो वैकुंठ में फिर उनको शरीर प्राप्त होता है, चतुर्भुज शरीर प्राप्त होता है, या स्त्री का शरीर प्राप्त होता है, लक्ष्मी जैसा शरीर प्राप्त होता है, पुरुषों को विष्णु जैसा शरीर प्राप्त होता है, स्त्रियों को लक्ष्मी जैसा शरीर प्राप्त होता है। तो वहाँ पर वो अपनी उस तरह की पहचान में रहते हैं कि वैकुंठ में वे भगवान के दास हैं। लेकिन कुछ लोग वैकुंठ में जाते हैं तो अपने इसी शरीर से जाते हैं, तो शरीर में ही वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, इस भौतिक जगत में जो शरीर था उसी की पहचान में वो वैकुंठ में रहते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की है इस श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी बोलिए। कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ अच्छा प्रश्न है। तो कलयुग में जिस तरह से असुविधा बढ़ जाती है, बाधाएं बढ़ जाती हैं, तो उतनी ही सुविधा भगवान की ओर से मिलती है। इसलिए कलयुग में जो हरि नाम का साधन है, जो दूसरे युगों में इसको गुप्त रखा जाता है, वेदों में गुप्त है, हरि नाम की जो महिमा है वेदों में गुप्त रखी गई है, तो प्रकट की जाती है, इतना सरल उपाय। तो जितना शरीर आपका अच्छा है, लंबी आयु है, तो उतना बड़ा होमवर्क आपको दिया जाता है कि भाई करो, खोजो। तो वे लोग जो है वेदों का अध्ययन करते हैं और जो है तपस्या करते हैं और बहुत से जो है साधन में लगे रहते हैं, हैं, लेकिन अब आयु बहुत थोड़ी है और उसमें भी कितनी बाधाएं हैं, शरीर भी खराब है, दिमाग भी खराब है ना, भाग्य भी खराब है, हैं, और आलसी भी हैं, तो फिर ऐसे में और भी सरल उपाय बनाया जाता है। तो भगवान की ओर से और भी सरल उपाय बनाया जाता है। तो श्री चैतन्य स्वयं भगवान जो है श्री चैतन्य के रूप में आए और उन्होंने हरिनाम कीर्तन को जो है फैलाया। फिर उनके जो है शिष्य परम्परा में दसवें आचार्य श्रील प्रभुपाद ने विदेशों में भी, पूरी दुनिया में इस हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाया। तो ये जो है सुविधा और सरल से सरल उपाय भी उस समय दिया जाता है। तो इस सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य में सौभाग्य, दुर्भाग्य में सौभाग्य। लेकिन जो लोग ना स्वीकार करें सौभाग्य को, तो क्या किया जाए उनके लिए, है ना। तो ये जो है बड़े दुर्भाग्य की बात है, किस दुर्भाग्य में हमको सौभाग्य मिला है, इन लोग इसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है ना। तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यमतः परम, फिर भी लोग नरक में जाते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। सुगमम भगवन नाम जिह्वा चावस वर्धिनी, तो भगवान का नाम बड़ा सरल है, हरे कृष्णा, क्या परिश्रम है, हरे कृष्णा। सुगमम भगवन नाम जिह्वा चावस वर्धिनी, और जिह्वा भी अपने बस में है, हरे कृष्णा अगर बोलना चाहो तो जिह्वा क्यों नहीं बोलेगी, बोलेगी। जिह्वा चावस वर्धिनी, पापी से पापी भी व्यक्ति जो है हरे कृष्णा बोल सकता है। तथापि नरकम यान्ति, फिर भी लोग नरक में जा रहे हैं, किम आश्चर्यमतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, ये आश्चर्य। लेकिन लोग इसको आश्चर्य नहीं समझ रहे हैं, आश्चर्य तो ये है, और दूसरे दूसरे आश्चर्य बताते हैं। ताजमहल बड़ा आश्चर्य है, विश्व के सात आश्चर्यों में से एक आश्चर्य अजंता की गुफा है, ताजमहल है, और क्या क्या आश्चर्य बताते हैं शास्त्र, क्या बताते हैं आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य ये है कि लोग नरक में जा रहे हैं, जबकि इतना सरल उपाय है नरक से छूटने का, आपकी जिह्वा आपके बस में है, हरे कृष्णा बोल सकते हैं, है ना। तो ये आश्चर्य है, ठीक है। और कोई मैं प्रश्न करूं, हाँ जी, माइक काम नहीं कर रहा क्या, क्या भाव होना चाहिए कि हमें हमेशा नया लगे। शुरू में हमें नया नहीं लगता, और हमें ये जो है पुराना लगता है, घिसा पिटा लगता है, ये सब घिसा पिटा है, है ना। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए उसको सुनना चाहिए, आदरपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि ये दवाई है, जैसे दवाई कड़वी हो, है ना। लेकिन रोग का जो है आप कष्ट जानते हैं कि रोग कितना कष्ट देने वाला है, तो कड़वी दवाई भी आप आदरपूर्वक ले रहे हैं। तो भवो सधात, परिसी महाराज कहते हैं भवो सधात, हाँ ये जो है भव औषधि है, कृष्ण कथा ये क्या है, भव की औषधि है, जन्म मरण से छूटने की औषधि है, इसलिए आप सुनिए। तो औषधि के रूप में इसको सुनना होता है। तो हमारी अविद्या की बीमारी है, अविद्या की बीमारी में हमें कृष्ण का नाम और कृष्ण के चरित्र कथा ये जो है मधुर होते हुए भी हमें कड़वे लगते हैं, इसमें रुचि नहीं होती है। स्यात् कृष्ण नाम चरितार्थ सताप्य विद्या तित्तोपतप्त रसन से न रोचिका, तित्तोपतप्त रसन से तित्तोपतप्त रचन से रोचिका है किंतु आदरा तम दिनम खल से विदुष्टा, परंतु आदर पूर्वक प्रतिदिन इसको सेवन किया जाए तो स्वादी क्रमाद भवति तद गदमूल हंत्री, तो धीरे धीरे ये स्वादिष्ट लगेगी और इसकी बीमारी की जड़ को समाप्त कर देगी। तो कल भी हमने चर्चा की थी गीता का जो श्लोक है 18वें अध्याय का 37वां श्लोक, कि प्रारंभ में विष के समान लगता है, परिणाम में अमृत के समान होता है, तो वो सात्विक सुख है। तो प्रारंभ में विष के समान लग सकता है, ये नाम है और कथा है, कि मैं क्यों सुन रहा हूँ बार बार, उन्हीं बातों को बार बार क्यों सुन रहा हूँ, लेकिन आदर पूर्वक हमें इसको सुनना होता है या नाम लेना होता है और प्रतिदिन नियम पूर्वक हमें ये कार्य करना होता है। तो जैसे पीलिया की बीमारी है तो पित्त का जो है प्रभाव होने के कारण जिह्वा में जो है जो मीठी मिश्री है वो कड़वी लगती है, लेकिन वही मिश्री जो है दवाई के रूप में जो रोगी लेता है ये सोच करके, आदर पूर्वक लेता है ये सोच करके कि ये कड़वी होते हुए भी ये मेरी बीमारी को ठीक करेगी, तो आदर पूर्वक कड़वी दवाई लेता है। दवाई कड़वी है लेकिन वो आदर पूर्वक लेता है, क्यों? उसकी बुद्धि में ये बात बैठी है कि मेरी बीमारी कितनी कष्टदायक है, तो उसकी तुलना में ये दवाई का जो कष्ट है, कलवापन है, ये इतना कष्टकारक तो नहीं है, तो आदर पूर्वक लेता है। तो वो दवाई जो है उसके बीमारी की जड़ को ठीक कर देगी और फिर वो मीठी भी लगेगी। तो ये कृष्ण कथा जो है आपको जो कड़वी लग रही है या विष की तरह लग रही है, तो यही कृष्ण कथा आपके अविद्या की बीमारी को ठीक कर देगी, तो फिर ये आपको अमृत की तरह लगेगी। तो यही जो पहले विष की तरह है वही परिणाम में अमृत बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन करना क्या है, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, आदर पूर्वक अनुदिनम प्रतिदिन इसका सेवन करो, ठीक है ना। तो विधि यही है, भवोषधात। और कोई प्रश्न? हाँ जी,
समय जैसे काल है,
हाँ,
काल का जो रोल है, जैसे भगवान का नाम लेते हैं लीला सुनना, इसमें तो काल
आप पास में आइए, पास में आइए।
काल है,
हाँ,
काल का जो रोल है जैसे नाम लेते हैं भगवान की लीला सुनते हैं, जैसे जब तक काल जो है उनको फिनिश नहीं करते तब तक मन को जो है रात ही लगती है, तो उसका जो है काल का रोल थोड़ा।
आपके पास समझ नहीं आ रही, और कोई प्रश्न है किसी का? क्या आप समझ गए तो बताओ क्या 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 कह रहे हैं।
जैसे हम काल के बारे में,
हाँ,
काल का जो काल है, यमराज जी का जो काल है,
हाँ,
भगवान का नाम या लीला जब लेते हैं तो जब तक समय जो है ना, काल जब तक उतना रोल नहीं करते तब तक, जैसे ये दुनिया नहीं हटती ना, तो फिर आगे हटती नहीं,
से में
काल की बात
है। समझा रहा
है क्या कह रहे
हैं? वो समय हमारा नष्ट नहीं हुआ, वो समय हमारे साथ रहता है। जो समय हम हरि नाम में कृष्ण कथा में लगाते हैं वो समय हमारे साथ जाता है, हैं? तो वो जो है समय हमारा जाता नहीं है, मतलब नष्ट नहीं हुआ, वो सुरक्षित है ना। तो आपका प्रश्न क्या है,
कैसे समझें
इसको, कैसे समझें? हाँ, इसको समझें, इसको समझना इसी प्रकार से है कि हमारी जो है जो चेतना शुद्ध हो रही है, हाँ, और कृष्ण भावना मृत जाग रहा है, तो आपने जितना समय आपने लगाया तो उसमें कृष्ण भावना मृत आपने मान लीजिए 1% जगा दिया, 1% जाग गया, है ना। तो वो क्या है, मृत्यु से छूटने की एक क्रिया आपने कुछ तो हो गई ना, आपकी कुछ हो गई है ना। तो वो जो समय है वो आपका जो है मृत्यु से आप मतलब बचे हैं, उस समय ने आपको मृत्यु से बचा लिया है। तो इस प्रकार से अगर आप जो है करते जाते हैं तो अगले जीवन में, अगर मान लो इस जीवन में पूरा नहीं हुआ, अगला जीवन भी मिला, तो जो आपने जो किया है कार्य वो आपके साथ रहता है और आगे से आप करेंगे। तो ये जो भक्ति के जो कार्य हैं ये आपके नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि परीक्षा में कोई व्यक्ति पास नहीं हुआ, फेल हो गया, तो उसके जितने भी नंबर आए अब वो सब जो है उसके चले गए, मिट्टी में मिल गए, अब दोबारा उसको फिर नंबर लाने पड़ेंगे, उतने नंबर उसके वो जो है जितने भी नंबर आए वो फेल हो गया तो वो नंबर आप उसको दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवान की जो व्यवस्था है उसमें ये सब सुरक्षित होते हैं। आप इतने नंबर आपने आप लाए हैं तो वो सुरक्षित हैं, और नंबर लाओ और नंबर लाओ। जब पास हो जाओगे सेंट परसेंट 100 में 100 तो आप जो है भगवान के धाम चले जाओ। उसमें कई जन्म भी लगेंगे तो भी आपके वो नंबर जो है सुरक्षित हैं। परीक्षा में ऐसा नहीं होता है, इतनी व्यवस्था नहीं होती है कि आप पास नहीं हुए तो आपके जितने भी नंबर आए तो वो जो है सुरक्षित रखे जाएंगे, नहीं सुरक्षित नहीं रखे जाएंगे। इतना जो है इतना हिसाब किताब का जो है मतलब इंतजाम हो ही नहीं सकता है कि किसी व्यक्ति पिछले वो फेल हो गया लेकिन कितने नंबर लाया वो, तो वो सुरक्षित रखे जाएं। इतना हिसाब किताब का जो है व्यवस्था है नहीं बहुत ही संसार में नहीं, लेकिन भगवान के जो है खाते में सब व्यवस्था है, आपका पूरा हिसाब किताब सुरक्षित रहता है। तो ये जो है मतलब मृत्यु से छूटने की एक क्रिया है जो आपका मतलब आपके साथ रहती है। आपने इतना किया तो वो आपके साथ है ना। अगर आप भूल भी गए उसको और फिर से भौतिकता में अगर लिप्त हो गए तो आपके साथ ये जो है जो आपने किया है भगवान की सेवा वो आपके साथ सुरक्षित है, ठीक है ना। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परामृतम्। अनेक जन्मों में भी जो है कोई व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करता है तो फिर भगवान के धाम जाता है। तो पिछले जन्म के जो संस्कार हैं उसको इस जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पूर्व शरीर में जो बुद्धि के संस्कार थे वो इस जीवन में उसको अनायास प्राप्त हो जाते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, उसके लिए प्रयास। तो ये व्यवस्था जो है भगवान की इसमें जो परीक्षा की परीक्षा भगवान का जो बोर्ड है परीक्षा का जो बोर्ड है उसमें इतनी व्यवस्था है। हाँ जी
हाँ 100 जन्म तक किसी ने भक्ति नहीं की।
हाँ
101
नहीं, भक्ति में भी अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो भक्ति नष्ट भी हो जाती है। हाँ अगर हम अपराध करते हैं वैष्णव अपराध करते हैं, अगर आपने वैष्णव अपराध नहीं किया तो आपकी भक्ति सुरक्षित है। जैसे कि भरत महाराज ने कोई अपराध नहीं किया था लेकिन हरण के प्रति आसक्त हो गए तो हरण का शरीर मिला, लेकिन हरण के शरीर में भी उनकी चेतना वही रही कि मैंने मतलब क्या गलती की मुझे हरण का शरीर मिल गया, तो वो चेतना रही उनकी। तो अगर हम अपराध नहीं करते हैं तो हमारी चेतना जो है वो रहती है। और भक्त ये प्रार्थना भी करते हैं कि ये चेतना अगर हमारी यही रहे इसी तरह की तो चाहे हमको स्वर्ग में निवास मिले दिव्या भूमिवा या पृथ्वी में या नरक में भी निवास मिले। अवधूरित सारदार बिंदो चरणों ते मरने भी चिंते आमी। तो आपके चरणों का चिंतन मैं करता रहूं तो मुझे जो है स्वर्ग में चाहे निवास मिले चाहे पृथ्वी में और चाहे नरक में तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। तो ये कृष्ण भावनामृत जो है एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको नरक में भी जो है सुरक्षित रखेगी और आपको जो है कोई कष्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये भक्तों की प्रार्थना होती है कि किसी भी योनि में जाए, है ना। नंद महाराज भी ऐसे कहते हैं ना, उद्धव जी से कहते हैं कर्मवीर भ्राम्य माणा नाम यत्र क्वापि सुरेच्छया मंगलाचर्य तैरदानेर रतिर्ण कृष्ण ईश्वरे। कर्मवीर भ्राम्य माणा नाम, कर्म के अनुसार हम जो है ईश्वर की इच्छा से जहाँ जहाँ भी अपने कर्म के अनुसार भ्रमण करते हैं किसी भी योनि में रहें। मंगलाचर्य तैरदान, जो हमने जो मंगल आचरण किए हैं दान किए हैं उसका फल हमें ये मिले कि कृष्ण ईश्वर में हमारी आसक्ति बनी रहे। तो कृष्ण ईश्वर में हमारी आसक्ति बनी रहे तो वो अपना जितना भी उन्होंने पुण्य किया है उसका फल यही चाहते हैं कि कृष्ण में आसक्ति उनकी जो है बनी रहे। ब्रह्मा जी का भी जन्म न चाहिए और वैष्णव घर में कीड़े का भी शरीर मिले तो भी ठीक है। तो मतलब चेतना की बात है यहाँ कि चेतना हमें अगर मतलब वो उस तरह की मिले, कृष्ण चेतना अगर मिल जाए तो किसी कीड़े के रूप में भी हम रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन कृष्ण चेतना नहीं है तो ब्रह्मा का जीवन भी हमको नहीं चाहिए, तो वो असली सुख है वो, ठीक है ना। मैं प्रश्न करूं, और कोई प्रश्न है? अगले जीवन में आपको फिर से अवसर मिलेगा, अगले जीवन में आपको फिर से अवसर मिलेगा। प्रभुपाद तो कहते हैं कि मेरी पुस्तकों को कोई छू भी लेता है तो अगला जीवन मनुष्य का निश्चित हो जाता है, अगर छू भी लिया प्रभुपाद की पुस्तकें। लेकिन अगर आप जो है असावधान रहते हैं और वैष्णव अपराध करते हैं कुछ इस तरह, तो फिर जो है मनुष्य जीवन ना मिले और फिर जो है आपकी ये भक्ति भी जड़ से भी उखड़ सकती है। हाथी मत अपराध कहलाता है, आप वैष्णव निंदा करते हैं तो मत हाथी अपराध, तो वो भक्ति लता को जड़ से उखाड़ देता हाथी, ठीक है ना। तो हमें अपराध से बचना चाहिए, हम 10 नाम अपराधों से बचें, इसलिए हम रोज 10 नाम अपराध बोलते हैं कि हम अपराधों से बचें, ठीक है ना। धन्यवाद। हिरण्यराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा रुक्मिणी द्वारकाधीश गौर नताई जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय हो।
हरे कृष्णा। एक महत्वपूर्ण सूचना, आज हमारे बीच में बहुत विशेष वक्त साथ में और